તારીખ 22/12/1995 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 46
નંબરના પત્રમાં આપ્યો છે કે મણીને મોકલેલી વચનાવલી. મણી એટલે સૌભાગભાઈના પુત્ર મણીભાઈ, એમના માટે મોકલેલી વચનાવલી. વચનાવલી એટલે આ 200 આંક. વચનાવલીમાં આપની પ્રસન્નતાથી એ વચનાવલી વાંચીને સૌભાગ્યભાઈ પણ પ્રસન્ન થયેલા, અને એ પ્રસન્નતાથી અમારી પ્રસન્નતાને ઉત્તેજનની પ્રાપ્તિ થઈ. એટલે પોતે પણ વચનાવલી લખીને પ્રસન્ન થયેલા, એમાં વિશેષ ડિગ્રી વધી, ઉત્તેજન થયા એટલે ડિગ્રી વધી. કોણ? હા, ઠીક છે, તો શાંત થાય ઘર નહીં સમજો. જો પત્ર હૈ ઉસમે 14 વચન લિખે હૈ, સૌભાગભાઈ કે પુત્ર કે લીએ લિખે થે. વો પઢકર સૌભાગભાઈ ભી પ્રસન્ન હુએ, પણ ઉનકી પ્રસન્નતા કા પત્ર આયા વો પઢકર કે ખુદ કો ભી પ્રસન્નતા મેં વૃદ્ધિ હુઈ, ઉત્તેજના હુઈ. અબ દેખતે હૈ કે સંત કા અદ્ભુત માર્ગ ઉસમે પ્રકાશિત ક્યા હૈ. રચનાવલી કા વિષય ક્યા હૈ? સંત કા અદ્ભુત માર્ગ. સંત મેને જ્ઞાની પુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ કા અદ્ભુત માર્ગ એ વચનાવલી મેં લિખા હૈ. દેખો કે જીવ અપને આપ કો ભૂલ ગયા હૈ, યાને જીવ અપને આપ કો દેહ સ્વરૂપ યા કર્મ કે ફળ સ્વરૂપ જો મનુષ્ય અવસ્થા હૈ, યા જો જો ચાર ગતિ મેં જો ભી કર્મજનિત અવસ્થા કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, મનુષ્ય દેવ નારકી જો ભી હો, એસા હી માન લેતા હૈ. ઓર અનુભવ સે માલુમ પડેગા કે હમ અપને આપ કો ક્યા માનતે હૈ. हम मनुष्य गति में आए हैं तो हम मानस है, मानवी हैं, ऐसा मानने लग गए हैं. उसमें भी जो पुरुष है वो मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, जो स्त्री है वो मानती है कि मैं स्त्री हूँ. मैं जीव हूँ ऐसा कोई नहीं मानता, क्योंकि जीव न तो स्त्री है, न तो जीव पुरुष है, न तो जीव मनुष्य है. जीव तो जीव है जो मनुष्य आदि अवस्था को फिर बदली करता है. जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ये शरीर भी बदलना पड़ता है. तो मनुष्यपना वो जीव का स्वरूप नहीं है. जीव अपने मूल स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है. इसका मतलब कि वो अपने मूल स्वरूप को भूल गया है कि मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न और कोई मेरे संबंध हैं. जो संबंध है वो तो व्यावहारिक तौर से कर्म जनित हैं, प्रारब्ध जनित हैं. वो फॉर द टाइम बीइंग अमुक समय पुरता वो संबंध रहता है, फिर वो मिट जाता है. कोई किसी का संबंध रहता नहीं. जैसे कोई छोटी उम्र का आदमी आएगा, अभी उसको पूर्व भव का ज्ञान होगा, स्मृति ज्ञान. उसको पता चल गया कि मैं फलाना फलाना हूँ. वो आकर के बोलेगा किसी को कि तुम्हारा बाप मर गया है? कहाँ मर गया है? उसको बोलेगा कि उसको कहाँ से पता चला, ये तो अनजाना आदमी है. हाँ मर गया है बराबर, वही मैं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ. कोई संबंध मानने को तैयार हो गया क्या? चलो भाई चलो, तुम्हारी बात हमको सुननी नहीं है. शांत हो गया तो ऐसे ही उसको रवाना करेगा अशांत हो गया तो गर्म हो जाएगा, तो जरा सोच समाज में संभाल करके बोलना, वरना कुछ हो जाएगा तुमको। ऐसे कोई सीधी बात करे तो हाँ, मतलब वो है कि यहाँ से आयु पूरा होता है, आयुष्य पूरा होने के बाद कोई संबंध रहता नहीं है, और संबंध कोई बताए तो मानने को जीव तैयार होता नहीं है। हम नहीं मानेंगे वो बात, ये तो पिता की बात आई, पुत्र की बात भी नहीं मानेगा। कुछ नहीं, कोई आएगा कि आपका पुत्र फलाना फलाना इतने साल पर मर गया, कहाँ मर गया, तो वो मैं हूँ। चल भाई चल, क्यों तो उसमें इसे का सवाल आता है फिर कौन देगा कोई, अगर स्वीकार कर लिया तो ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं होगा, इसलिए कि उसका उदय भाव उसके साथ है ही नहीं, उस प्रकार का कर्म संबंध खत्म हो गया। तो कर्म का उदय में जो जुड़ान था, परिणाम था, वो भी मिट गया, अभी भाव आएगा ही नहीं, लाना चाहे तो भी आएगा नहीं। अगर कोई किसी को विश्वास आया कि हो सकता है भी तू मेरा पुत्र, लेकिन उसको पुत्र का भाव आएगा नहीं। जो परायापन है वो परायापन ही दिखेगा, उसको अपनापन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके परिणाम उदय भाव है वो बदल चुके हैं, खत्म हो गए आगे वाले, वो भाव ला नहीं सकता, उदय भाव भी नहीं ला सकता, लाना चाहे तो। आशय वो है कि अपना मूल स्वरूप को जीव भूल गया है, और उसकी वजह से उसको सच्चे सुख का वियोग है। कृत्रिम सुख तो जो संसार के हैं अनुकूलताओं का, वो कोई वास्तव में सुख नहीं है, इसलिए कि पश्चात तो दुख वो सुख नहीं, जिसके पीछे दुख हो उसको सुख नहीं कहते। सच्चा सुख हमेशा हमेशा रहता है, क्योंकि जीव का प्राण है तो वो हमेशा रहता है सच्चा सुख। और सच्चा सुख जब हमेशा रहता है तो निराकुल सुख, उसमें थकान नहीं आती, पीछे दुख नहीं होता, परमानेंट रहता है, और वो वृद्धिगत होकर के बेहद दशा को प्राप्त करता है, वही सच्चा सुख है। ऐसा सर्वधर्म सम्मत कहा है, ये बात तो जो आस्तिक संप्रदाय है वो सबने स्वीकार किया है कि संसार में जो सुख है वो सुख नहीं है, सुख निराकुलता शांति जो है वही सुख है, और वो सर्वधर्म सम्मत है, वो बात सबको सम्मत है। ऐसा सुख जीव को क्यों नहीं मिलता है, तो अपने मूल स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए मूल स्वरूप में ऐसा सुख शक्ति रूप पावर के रूप में रहा है, उस शक्ति का सदुपयोग करने से उस सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसे सुख की प्राप्ति का विचारवान जीव को यथार्थ प्रयास करना चाहिए। अपने आप को भूल गया उस रूप जो अज्ञान है वो ज्ञान मिलने से नाश होता है, ऐसा निशंक मानना। हम लोग इधर स्वाध्याय क्यों करते हैं, इधर आए या घर पे भी करते हैं, जहाँ भी होते हैं वहाँ करते हैं, कि हम हमारे स्वरूप को मूल स्वरूप को भूले हुए हैं, उसको अज्ञान कहते हैं, और अपना मूल स्वरूप का ज्ञान होवे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पीछे हेतु क्या है, मोटिव क्या है, कि अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो सच्चा सुख मिले, और हमारा दुख हमेशा के लिए मिट जाए। दुख दुख के प्रकार बहुत है, कोई भी मनुष्य जन्मता है, कोई भी प्राणी जन्मता है तो उसको दुख होता है, मरता है तो भी दुख होता है, और संसार में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, बाधाएं, पीड़ाएं, रोग, अकस्मात, और सबसे ज्यादा टेंशन का दुख सबको होता है। इस सभी प्रकार का दुख मिटाने का एक ही उपाय है कि अपना मूल स्वरूप का आत्मज्ञान करना। वो आत्मज्ञान करने के साधन कौन सा है? सत्संग, सत्शास्त्र, वहाँ वो ज्ञान पड़ा है, वहाँ वो ज्ञान की चर्चा होती है और उससे वो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अगर यथार्थ रूप से किया जाए तो। अपने आप को भूल गया रूप अज्ञान ज्ञान मिलने से नाश होता है और ऐसा निशंक मानना चाहिए, इसमें संदेह शंका करने की जरूरत नहीं। अब कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए। जो आत्मज्ञान है वो एक खास प्रकार का सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो स्पेशल सब्जेक्ट है। जैसे हमारे लौकिक में जो टेक्निकल ज्ञान है, तकनीकी नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसका प्राप्ति कहाँ से होती है? कि उसके जो तज्ञ होते हैं, उस विषय के जो जानकार होते हैं, उनके पास से होती है। हर एक के पास से नहीं होती है। किसी को डॉक्टर होना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है और उसके सिखाने वाले डॉक्टर को अच्छी तरह पढ़ा हो, वही समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे किसी को जज होना हो या वकील होना हो तो उसको लॉ कॉलेज में जाना पड़ता है और उसके जो सिखाने वाले प्रोफेसर होते हैं वो उस विषय के मास्टर होते हैं, तब सिखा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट पर जिसकी मास्टरी होती है वही उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो तो बात तो सीधी साधी। तो यहाँ भी हमारे स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान जिसको चाहिए उसको आत्मज्ञानी के पास जाना चाहिए। वो बात तो समझ में आए ऐसी है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आता है। यह बात सीधी साधी समझ में आ सकता है क्योंकि वो खास प्रकार का विषय है, तो खास प्रकार का विषय तो खास जानने वाले के पास से मिलेगा, क्योंकि हम अनजाने हैं इसलिए। फिर भी जीव लोक लज्जादि कारणों से अज्ञानी का आश्रय छोड़ता नहीं है, यही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। बहुत गहरी बात किया है कि मनुष्य कोई न कोई संप्रदाय में जन्म लेता है, उस संप्रदाय में इसके गुरु वगैरह होते हैं। हर संप्रदाय में अपने अपने गुरु होते हैं और हर संप्रदाय में इस संप्रदाय की समाज भी होती है। तो समाज की लज्जा आगे आती है, ज्ञानी के पास जाने में क्या तकलीफ होती है? कि ज्ञानी संप्रदाय में मानते नहीं है, संप्रदाय बुद्धि से वो बिहेव करते नहीं है, तो वो संप्रदाय से अलग पड़ जाते हैं। वो संप्रदाय से अलग पड़ते हैं, इसके पास कोई जाता है तो संप्रदाय वाले उसके ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। अब उधर क्यों जाते हैं? हमारे गुरु तो इधर है, आपको इधर रहना चाहिए, वहां क्यों जाते हो? आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई गुरु के एजेंट होते हैं ना, ऐसे बिहेव करेंगे। इसको पूछना चाहिए कि आपको एजेंसी दिया है क्या? हाँ, ऐसा क्यों करते हो? गुरु के पास जाने नहीं, जाने के लिए गुरु कहेगा हमको, बीच में दूसरे कहने वाले कौन होते हैं? लेकिन ऐसा होता ही है, लोग में ये सामान्य ट्रेडिशन है। तो जो मन के विचार के कमजोर होते हैं उनको लोक लज्जा आड़े आती है कि हम जाएंगे और जगह जाएंगे तो अपने संप्रदाय वाले बोलेंगे आप माँ के क्यों जाते हो, आपको माँ नहीं जाना चाहिए। घर वाले भी कहेंगे और समाज वाले भी कहेंगे, दोनों बात खड़ी होती है। तो उस कारण से जीव ज्ञानी के पास जा सकता नहीं और अज्ञानी गुरु है उसका आश्रय छोड़ सकता नहीं, और इस कारण से उनको जो तीव्र कषाय है तो क्रोध मान माया लोभ आदि जो अनंतानंद अज्ञान और मिथ्यात्व है वो मिलता नहीं, इस कारण से नहीं मिलता क्योंकि ज्ञानी के पास जाता नहीं और अज्ञानी का संग बना रहता है संप्रदाय में।
अज्ञानी को ही ज्ञानी मान लिया तो
अज्ञानी को ज्ञानी माना और ज्ञानी को अज्ञानी माना दोनों एक ही बात है। और अपने अपने जो गुरु है उनको अज्ञानी को ही ज्ञानी मान करके तो जाते हैं, अज्ञानी को ज्ञानी मानते ऐसा ही तो हो रहा है, वो मिटाने की तो बात है। और जब ज्ञानी के पास जाना है तो ज्ञानी कैसा होता है वो परखने की जिम्मेवारी अपनी होती है, वो परखने की जिम्मेवारी अपनी होती है। वरना अज्ञानी के पास अज्ञानी को ज्ञानी मान करके फिर और जगह फंसेगा, तो उनमें से चूर में आ गया, उनमें से चूर में समझते हैं। एक सर्प था पहले के जमाने में, तो क्लैब नहीं थे ऊपर सर्पे में, मधमिट्टी के नलिया होता है ना, नलिया ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, नलिया ही बोलते हैं ना,
मारवाड़ी में केलू,
केलू हिंदी में क्या बोलते थे, छप्पर, छप्पर में तो छप्पर में जो मिट्टी के होते हैं उसको क्या बोलते
हैं,
करेलू, कबेलू। वहाँ एक सर्प चल रहा था, नीचे चूल पे एक तेल की कढ़ाई थी, उसमें गर्म तेल भी था और उसका धुआं ऊपर जाता था, तो उसको धुआं लग गया, धुआं लग गया तो इसकी जो पकड़ थी छपकी वो छूट गई और नीचे गिर गया गरम गरम तेल में। तो गरम तेल में वो गिरा तो उतनी गर्मी लगी कि उछला, उछला तो पड़े चूलमा, नीचे चूल थी, खुली गर्मी थी, खुली अग्नि थी, तो उल में से पड़ा चूल में, क्या फायदा हुआ, या तो उल कढ़ाई में मर जाता, अब चूल में मर जाएगा। ऐसे अज्ञानी के पास तो जाता ही था, फिर दूसरे अज्ञानी के पास जाने लगा, बात वो कि वो हो गई उनके लिए, तो उल में से चूल में गया, तो दोनों जगह उनको नुकसान ही नुकसान होता है।
यहाँ पर तो ऐसा मामला वो गुरु के सामने अज्ञानी, मतलब चेला बोलते नहीं ये अज्ञानी भी अज्ञानी, गुरु तो ऐसा बोला मैं अज्ञानी, और शिष्य बोलता नहीं ये अज्ञानी भी अज्ञानी,
परीक्षा तो खुद की करनी है ना, कोई क्या ही बोले, गुरु भी ज्ञानी बोले तो क्या हो गया, चेला का क्या बात करो, गुरु भी कहे कि मैं ज्ञानी हूँ तो इससे कोई मान ले क्या। अभी एक आदमी आया था अमेरिका से, कुछ दिन पहले की बात है, भावनगर में रात को करीब 11 बजे हम अभी सोए हुए नहीं थे, एक टेलीफोन आया तो हमारे दाना पीठ के मुझे व्यापारी थे, हमारी बाजार के एक व्यापारी का फोन था, मैं नवल चंद भाई बोल रहा हूँ, मैंने सोचा मैं तो 7-8 साल से बाजार से तो बिल्कुल अलग हूँ, क्या बात होगी? बोलो बोलो भाई, क्या बात है? क्योंकि मेरे एक मेहमान आए हैं अमेरिका से, वो अमेरिका में जैन जैन शास्त्रों की लाइब्रेरी बना रहा है और कुछ किताबें आपके शास्त्रों की उनको चाहिए, तो आप इनसे बात कर लो करके उनको रिसीवर दे दिया। तो बोले कि मैं आपको कम मिल सकता हूँ, मेरे पुस्तक चाहिए आपके ट्रस्ट के और सौंदर्य के न्यूज में, पर सुबह 9:30 बजे आ जाना, उधर एड्रेस दे दिया, वो आएगी। आए तो सबसे पहले उसने ये पूछा कि भाई मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, ऐसा तो मैं सोशल वर्कर हूँ, लाइब्रेरी वगैरह वहाँ करता हूँ, अपना जैनियों की बहुत प्रवृत्ति करता हूँ, थोड़ा रिटायर भी हूँ, तो ऐसे सब करता हूँ, लेकिन वास्तव में वो बात है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, तो इसके लिए मुझे आत्मज्ञानी से मिलना है, तो आपकी नज़र में कोई आत्मज्ञानी हो तो बता दीजिए। कोई एड्रेस वेड्रेस हो तो मुझे कोई दे दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। मैंने कहा भाई देखो, ये बात इस तरह से तो हैंडल नहीं की जाती, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि भाई फलाना फलाना आत्मज्ञानी है, तो आपको मान लेने से क्या फायदा? आपको तो पता है नहीं, अगर मेरी भूल हो गई तो आप तो फंस जाओगे ना। इसलिए आत्मज्ञान के विषय में वो विषय कहने सुनने का है ही नहीं। क्या है? कोई कहे तो सुनने लायक नहीं है, इसलिए कहने सुनने की वो विषय ही नहीं है। तो फिर वो विषय कैसा है? तो वो विषय परख करने का है, खुद की सूझ चाहिए, और इसके लिए आपको सत्संग करना होगा। आप सत्संग करके तैयार हो, फिर खोज करो, फिर आपकी नज़र में कोई ज्ञानी लगे तो मानो, किसी के कहने से मत मानिए। चलो मैं बोल दूंगा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ और आप मान लो, और मैं नहीं हूँ तो? और अगर मैं हूँ और मैं कहूँ कि भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो आपकी क्या हालत होगी? आप तो वंचित रह जाएंगे दोनों बात में, इसलिए आपकी सूझ होनी चाहिए। हम कितने टाइम इधर रहने वाले हैं? तो कहने मैं तो कल जाने वाला हूँ। ठीक है, आपको समय हो तो सत्संग में आया करो, सोचो किस विषय यहाँ चलता है, आत्मज्ञान का ही विषय हमारे यहाँ तो चलता है, दूसरा विषय नहीं चलता है, फिर आप समझो सोचो और सत्संग में रहोगे तो कोई बात की सूझ आ सकती है। बाकी ऐसे ये कोई बाजार की चीज़ नहीं है कि 10 रुपया हमको कोथमरी चाहिए, धनिया का पत्ती दे दो, ऐसी चीज़ नहीं है। इस तरह से वो बाजार में ऐसे जो ऐसी चीज़ मिल जाती है, ऐसे वो बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। तो वो बात है कि ज्ञान ज्ञानी का आश्रय जीव करता नहीं, क्योंकि उसको एक तो परख नहीं आती, और अज्ञानी का आश्रय लोक लज्जा आदि कारणों से छोड़ता नहीं। आदि में दूसरे दूसरे कारण ले लेना, इस प्रकार का जो चर्चा हुई ना, इस प्रकार का कारण ले लेना। ज्ञान की प्राप्ति जो इच्छता है, चाहता है, जिसको भी इच्छा हो, उसको ज्ञानी की इच्छा से वर्तना, ऐसा जिनागम आदि सर्वशास्त्र कहते हैं। ये सब शास्त्र मान्य है, शास्त्र का आदेश है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्ति चाहिए तो ज्ञानी की आज्ञा और ज्ञानी की इच्छा, इच्छा वही आज्ञा लिया, इधर तो आज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया, इच्छा शब्द का प्रयोग किया। सामान्य तौर से जो आज्ञा है वो गंभीर विषय के लिए होती है, आज्ञा है वो गंभीर विषय के लिए होती है, और इच्छा तो सामान्य विषय के लिए भी हुआ करती है। तो यहाँ तो सामान्य जो बात है जैसे आज्ञा को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ऐसे इच्छा को भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वहां तक की बात कृपा गुरुदेव ने लिया है, ज्ञानी की इच्छा से बरतना। ऐसा जिनागमवादी सर्वशास्त्र कहता है अपनी इच्छा से प्रवर्तन करते करते जीव अनादि काल से भटका है। जो अनादि काल से रुलता है, भटकता है, इसका कारण वो है कि वो अपनी इच्छा से प्रवर्तता है, यानी कि इच्छा और आज्ञा से प्रवर्तता नहीं है।
यानी कि इच्छा यानी ज्ञानी की अनुकूलता से,
अनुकूलता का सवाल नहीं है। उनका जो इच्छा है इसको इसको प्रतिकूल नहीं जाना है हमको। वो ऐसा चाहता है लेकिन हम ऐसा चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो अनुकूल हो गया ना, प्रतिकूल नहीं जाना,
ठीक है। अनुकूल वर्तन यानी कि तो प्रतिकूल वर्तने से क्या फायदा, अनुकूल वर्तने से ही फायदा है। यानी कि इच्छा से अनुकूल वर्तना वो तो ठीक है, आज्ञाकारिता है, और उसे आज्ञाकारिता होती है तो स्वच्छंद नहीं होगा, वरना स्वच्छंद होगा ही। कहते हैं कि उस प्रकार से नहीं वर्तने से तो उसका भटकना हुआ है, क्योंकि आज्ञाकारिता में नहीं आया, यही कारण है। बहुभाग क्या करता है कि कुछ बात मानता है, कुछ बात नहीं मानता है। ये बात यहां तक होनी चाहिए कि 1000 में से 999 माने और एक नहीं माने तो 999 को मानता नहीं है, ऐसी बात है। ऐसा बनता है तो इस तरह से उनकी अवमानना हो जाती है, तो उनको पता चलता नहीं है खुद को। वो ऐसे भ्रम में रहता है, धोखा में रहता है कि मैं तो मानता हूँ, लेकिन नहीं मानता है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता।
नहीं मानता है कि मतलब अमलीकरण में नहीं देखता,
नहीं उसको सम्मत नहीं करता। वो अमलीकरण की बात तो बहुत दूर की है, अभी तो स्वीकार करने की बात है। अमलीकरण तो तब आता है कि जब 100% स्वीकार होता है तब अमलीकरण में आ सकता है, इसके पहले अमलीकरण में नहीं आ सकता। हाँ, ज्ञानी ने सम्मत किया वो सर्वसम्मत करना,
वो सब अनंत ज्ञानी गर्भित हो गए। अनंत ज्ञानी भी गर्भित हो गए।
हाँ, तो है एक ज्ञानी की बात है, सब ज्ञानी की होती है।
बात तो सम्मत करता है, फिर भी अमलीकरण में नहीं आता, उसमें किस तरह का शोषण कर रहा है?
वो सम्मत करता है और अमलीकरण में नहीं आता है, इसका कारण वो है कि अमलीकरण के लिए तो बल चाहिए, उत्साह चाहिए, उतना बल नहीं पैदा हुआ है, और बल पैदा नहीं होने के बहुत से कारण हैं, असत्संग असत प्रसंग कि बल पैदा नहीं होने देता, परलक्ष होता है तो बल पैदा नहीं होने देता। परलक्ष पड़ने से माना हो, लक्ष्य पड़ने से नहीं माना हो, तो अनेक प्रकार के कारण होते हैं, तो अमलीकरण में नहीं आएगा। तो मानने का मतलब तो रहा नहीं कुछ। जो बात समझ में आई अगर उसका सदुपयोग नहीं होता है तो फिर उसका सार्थकपना कैसे, कोई सार्थकपना तो नहीं रहा। हाँ, आज्ञा और इच्छा में वो बात है। उसमें क्या इच्छा को आज्ञाकारिता उतने हद तक होनी चाहिए थी, इसके विकल्प और इच्छा आज्ञा ही उसको लगे, उसको आज्ञा रुचि रूप संकेत बोलते हैं, जो पहला संकेत है ना उसमें वो शब्द का प्रयोग है 751 में, आज्ञा रुचि रूप संकेत, पहला संकेत तो ऐसा होता है, क्योंकि उसको तो विकल्प और इच्छा आज्ञा ही लगता है, ये जो कहे वो मेरी आज्ञा है।
ज्ञानी पुरुष की इच्छा और आज्ञा, तो आज्ञा ज्यादा सुखी दे रहे, इच्छा छोड़ दी,
आज्ञा
ज्यादा पावरफुल भी
है, हाँ ज्यादा वजनदार है, ज्यादा वजनदार है, तो आज्ञा का उल्लंघन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज्ञानी तो ये कहेंगे कि तुम सम्यक दर्शन या आत्म कल्याण चाहते हो तो तुम्हारे लिए ऐसा करना जरूरी है, होमवर्क जिसको बोलते हैं। अब नहीं करता है तो क्या बात हुई, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो इतना वजन आ जाए तो आज्ञा पालन हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा अनुसार, यानी आज्ञा अनुसार, जो इच्छा का शब्द ही आज्ञा कर दिया है यहाँ, इच्छा को ही आज्ञा बता दिया है। जब लोग प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा अनुसार यानी के आज्ञा अनुसार नहीं वर्तने में आएगा, तब तक अज्ञान की निवृत्ति में अज्ञान का नाश होना संभव नहीं है, वहां तक अज्ञान का नाश नहीं होगा, क्योंकि वहां तक स्वच्छंद है जीव का, वहां तक उसको अज्ञान का नाश होने की योग्यता नहीं है और ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता नहीं है, क्योंकि उसको पहला संकेत ही नहीं है, पहला संकेत की भी प्राप्ति नहीं होगी तो फिर दूसरा तीसरा का तो सवाल होता ही नहीं, तो बहुत आगे की बात है तीसरा वाला, तो तीसरा होता है तब ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी स्वसंवेदन के काल में सम्यक दर्शन तो होता है, जो तीसरा सम्यक दर्शन है वो, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा अनुसार वर्तन करना ही अज्ञान के नाश का एक मूलभूत सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत में ये एक मूलभूत सिद्धांत है, और भी दूसरे आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन के लिए सिद्धांत तो है ही, लेकिन ये मूलभूत सिद्धांत है। ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वह कर सकता है कि जो एक निष्ठा से तन मन धन के आसक्ति का त्याग करके उसकी भक्ति में लगता है, जुटता है। यानी कि आज्ञा का आराधन करने वाला कौन होता है, कि जिसको प्रतिबंध नहीं हो, ये कुटुंब प्रतिबंध में आता है, तन मन धन सब, तन में शरीर प्रतिबंध भी है और धन में कुटुंब प्रतिबंध है और मन में अपना जो भी मिसकॉन्सेप्ट है या जो भी अपनी प्रकृति है वो सब मन के परिणाम आ जाते हैं। समाज की बात तो पहले रख दी, लोक लज्जा तो पहले छोड़ो, तो समाज प्रतिबंध की बात तो पहले कर दिया, अब तो तन मन धन का प्रतिबंध नहीं हो वही ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कर सकता है। ज्ञानी के आज्ञा में एकतान होने के लिए वो चला था विषय अपने जब चला था वहां केशवाई के वहां भी चला था, इधर भावनगर में भी लिया था इन दिनों में, हाँ तो उसमें लिया था, तो एकतान होने में आसान नहीं है, वो सुलभ है इसलिए कि उसमें प्रतिबंध तोड़ना पड़ता है, तब ज्ञानी में ज्ञानी की आज्ञा में आ सकते हैं, ज्ञानी के आज्ञा का आराधन वो करता है, आराधन करने की बात है। हम मन से तो मानते हैं लेकिन हम अमलीकरण नहीं करते हैं तो आराधन नहीं हुआ। और वो मानता मान्यता मान्यता के रूप में सार्थक नहीं हुई। तन से मन से धन से सबसे कोई भी बात और भी कोई रह गया हो तो सबसे एक निष्ठा किसको बोले। एक निष्ठा में वो बात आ जाती है। हाँ एवरीथिंग एक निष्ठा में एक मैंने एक बाकी सब उड़ा दिया छेद कर दिया उसका नाम एक है। एक निष्ठा से जो ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करता है वो उसमें भक्ति नहीं उसको उसकी सही भक्ति है। सिर्फ वो बात नहीं है कि पद बोलना वही भक्ति है। जो एक निष्ठा से तन मन धन के प्रति अपनापन को छोड़ता है या छोड़ने का प्रयत्नवान है दोनों का बात दोनों की बात बराबर है। किसी को छोड़ किसी ने छोड़ दिया हो उसका तो आत्मकल्याण होने की योग्यता आ गई। किसी को नहीं छूटा हो उसको छोड़ने का प्रयास होना चाहिए तो छूटेगा प्रयास से छूटेगा अवश्य। और वही ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करता है और वही ज्ञानी की भक्ति में झुकता है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति चाहते नहीं क्या ज्ञानी भक्ति भक्ति करने की जब बात आई और वो ज्ञानी कहते हैं तब उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानी की भक्ति करो तो ज्ञानी को भी लगता है कि अगला मेरे पर डाउट करेगा इनको कुछ अपेक्षा होगी। ज्ञानी भक्ति चाहते नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भक्ति करता है नहीं करता है उसमें वो मेरापन तेरापन करते नहीं है। मेरापन तेरापन तो नहीं करते तो ये मेरा भक्त है वो मेरा नहीं है। ज्ञानी के पास नया आएगा तो उसको अधिक रिस्पॉन्स देगा। पुराना वाले को तो समझता है कि वो तो कहीं अभी पक्का हो गया है उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन ये नया है उनको स्थिर करो वरना वो दूर चला जाएगा। तो उसके लिए ऐसे मेहमान आते हैं तो हम हलवा बनाते हैं लेकिन रोज हलवा बना के नहीं खाते हैं रोज तो सादा भोजन ले लेते हैं लेकिन मेहमान के लिए मिठाई बनाएंगे। ऐसे ज्ञानी को ये मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका पक्ष करूं ऐसी बात कभी नहीं होती। अगर वो अपना भक्त नए के प्रति दुर्व्यवहार करेगा तो क्या बोलेगा ये बात कभी होनी चाहिए। क्योंकि वो चाहते नहीं कुछ उनको वो चाहना नहीं है कि कोई मेरी भक्ति करे। वो भक्ति करने से कोई भक्ति करते हैं तो इसमें आत्मा में क्या आता है। भक्ति में तो क्या मान सम्मान ज्यादा मिलता है। फोगानी जी क्या बोले कि अगर गुरुदेव ने ध्यान लिया तो मुझे क्या फायदा होगा मेरा तो कोई इसमें प्रयोजन ही नहीं है। कोई मुझे जाने के मुझे ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है मुझे क्या प्रयोजन है इससे मेरे तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो गुप्त रहना चाहते क्योंकि कोई मानने से कोई आ जाता नहीं आत्मा में नहीं मानने से आत्मा में से कोई चला नहीं जाता। और संसार के कुछ लोग जानेंगे और कुछ लोग नहीं जानेंगे। जानेंगे वो तो मुट्ठी भर होंगे नहीं जानेंगे उसकी संख्या बहुत है लेकिन अनंत सिद्ध तो जानेंगे। कौन सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध है अनंत सिद्ध परमात्मा जानेंगे कि उसको सुनिए दर्शन भाई, इससे बढ़िया तेरे लिए कौन सा मान चाहिए, इससे बड़ा मान कौन देने वाला है, सिद्ध भगवान तुम के ज्ञान में आ गया वही सबसे बड़ा मान है। एक पद है गुरुदेव गाते समय भूल गया कि तीन लोक के नाथ ने तुमको मान दिया, फिर जग अपमान करता है तो तुझे क्या इसका फर्क पड़ता है, जगत के जीव अपमान भी करेंगे नहीं जानेंगे तो, अपमान करके निकाल देंगे वो, यहां से निकल जाओ यहां नहीं आने देंगे आप, इससे क्या फर्क पड़ता है। सिद्ध भगवान ने तो आदर किया, अगर किसी ने अनादर कह दिया कर दिया तो समझो कि बच्चे हैं बालक है कुछ भी बोल देता है बच्चा कभी भी। हाँ ऐसा प्रसंग बना था गुरुदेव का, जो भावी पर्याय है ना सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर की, तो कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है, वैसी नहीं है, विरोध भी करते हैं अपने गुरुदेव के अनुयायियों में से, बाहर वाले तो नहीं माने, तो गुरुदेव को ही नहीं मानते थे तो भावी पर्याय को कहाँ से मानेंगे, लेकिन हमारे मुमुक्ष में सबको बात अनुकूल नहीं पड़ी। तो बेंसरी ने एक दफे चर्चा में ऐसी बात किया, वो बात आएगी नया ग्रंथ में आएगी, वो बात नया ग्रंथ में आएगी, गुरुगुण संभारणा में भी शायद है, गुरुगुण संभारणा में है वीडियो में, वीडियो में थी, गुरुगुण संभारणा में नहीं, नए ग्रंथ में आएगी, कि पूर्व भव में त्रिलोकीनाथ सिमंदर परमात्मा ने धर्म सभा में गुरुदेव को तिलक किया था। ये सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर होंगे चार भव के बाद, ये बात जब भगवान की वाणी में आई और हमने सुनी तो उस प्रसंग को वो क्या बोले कि त्रिलोकीनाथ ने तिलक किया, और एलिटरेशन किया कि जब त्रिलोकीनाथ ने तिलक किया है तो सामान्य प्राणी इसका विरोध करके क्या करेगा। कोई तिलक को निकालना चाहेगा निकलेगा क्या, कि ये तो संभोशरण में सिमंदर भगवान जैसे त्रिलोकीनाथ ने उठ करके तिलक किया है, उठते नहीं है लेकिन वैसा बोलने में आता है, अपने अपने उठ करके तिलक किया है, उस तिलक को कौन मिटाएगा, तो उसको कोई मिटा सकते नहीं है। तो भगवान की वाणी और भगवान का केवल ज्ञान कोई निष्फल होता है क्या। कहते हैं कि ज्ञानी भक्ति चाहते नहीं परंतु मोक्षाभिलाषी को यह किए बिना उपदेश परिणमित होता नहीं। किसको लिया है, मोक्षाभिलाषी को लिया है, सामान्य मुमुक्षु नहीं लिया। मोक्षाभिलाषी कौन होते हैं, जो पूर्णता के लक्ष्य वाले होते हैं वो होते हैं। तो यह एक बात का बहुत अच्छा मेल बैठता है कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है ऐसा जो मोक्षाभिलाषी है वो ज्ञानी का ज्ञानी की भक्ति एक निष्ठा से करेगा, क्या करेगा, एक निष्ठा से करेगा ज्ञानी की भक्ति, और अगर वो नहीं करता है तो उसको भी आगे वाली बात उपदेश उसको परिणमन होता नहीं, मैंने वो आगे के स्टेज में नहीं आएगा, वो वहां से विच्युत हो जाएगा, उसकी योग्यता बदल जाएगी। एक निष्ठा से होना चाहिए। यद्यपि ज्ञानी भक्ति चाहते नहीं परंतु मोक्षाभिलाषी को यह किए बिना उपदेश परिणमित होता नहीं, एक निष्ठा से उसको सम्मत करना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वो मोक्षाभिलाषी भी नहीं रहेगा फिर, और मनन और निधिध्यासन का हेतु होता नहीं, और ये उपदेश का मनन भी नहीं होगा। क्यों? कि वो तो उसने अवमानना कर लिया, और निधिध्यासन मैंने विजुअलाइजेशन भी नहीं होगा, चिंतन भी नहीं होगा, और निधिध्यासन भी निधिध्यासन मैंने विजुअलाइज करना वो भी नहीं होगा। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, सभी सत्पुरुषों ने ऐसा कहा है। मैं कहता हूं उतनी बात नहीं है, आगे भी सभी सत्पुरुषों ने ऐसी बात कही है। तो ज्ञानी की भक्ति की बात मुमुक्षु के लिए जो आती है वो किसके लिए आती है? ज्ञानी के लिए आती है या मुमुक्षु के लिए आती है? ये बात मुमुक्षु की भलाई के लिए आती है, ज्ञानी के लिए नहीं आती, क्योंकि ज्ञानी निष्प्रभ होते हैं, इसको तो किसी से लेना देना है ही नहीं। कोई आया तो ठीक, कोई नहीं आया तो ठीक। जिसको दुकानदारी होती है उसको तो तकलीफ हो जाएगी कि मेरे पास आने वाला उधर क्यों चला गया, उनको तकलीफ होगी। ज्ञानी को तो मालूम है कि जो पात्र होंगे वो ठिकाने पे रहेंगे, जिसकी पात्रता नहीं होगी उसको रखना ही मुश्किल है हमारे पास, तो उनको तो यही लगेगा कि हमारे पास उसका रहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं है, वो टिकेगा कैसे? कोई दूर चला जाएगा, कोई नहीं कोई बहाने दूर चला जाएगा, कोई भी कारण मिलेगा वो दूर चला जाएगा, और जो पात्र होगा वो तो छोड़ेगा नहीं। तो वो तो शायद जानते ही हैं, तो वो तो पात्र जीव तो के प्रति उनकी प्रसन्नता रहती है। एक सीधा प्रश्न पूछने में आए कि ज्ञानी की कृपा किसके पर होती है? क्यों? कि गुरु कृपा मोक्ष मूलम है, मोक्ष का मूल है, मूल नहीं, पूजा मूलम गुरुपादम, इसमें लास्ट पद वो है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपादम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य वो मंत्र समझ लेता है, अपने आत्मा का उद्धार के लिए ये मंत्र है, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु कृपा किसके पर होती है? कि जो सुपात्र होते हैं उसके पर होती है। वो क्या बात है, वो कैसे? कि सुपात्र जीव को देख करके ज्ञानी का चित्त प्रसन्न हो जाता है। क्या होता है? अरे ये जीव सुपात्रता में आ गया, अभी तो ज्ञानी हो जाएगा आगे बढ़ करके। जो सुपात्र होता है वो आगे जा करके ज्ञानी होने वाला है, तो उनके चित्त में सहज प्रसन्नता आती है। ये प्रसन्नता का दूसरा नाम है गुरु कृपा, और ऐसी प्रसन्नता जिस पर आई वो आगे जाकर के मोक्ष में जाने वाला होता है, इसलिए उसको मोक्ष मूलम किया कि मोक्ष का मूल है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के पास कृपा करने का कृपा का स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए कुछ पर करते हैं या कुछ पर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर स्टॉक खत्म हो जाए तो, ये बात नहीं है। सहज जो सुपात्र होते हैं उस पर प्रसन्नता आती है, वो सहज कुदरती उनके परिणाम ही ऐसे होते हैं ज्ञानी के, तो उससे मालूम पड़ता है कि ये जीव आगे जा करके छूट जाएगा, उसका संसार का निवेड़ा हो जाएगा। वो तो टाइम पीरियड की बात है, और हमारा टाइम पीरियड भी इसमें ही समझ लेना, हम क्यों उसमें बाध रहे हैं? 608 वाले में नंबर अपना क्यों नहीं लगे? अपना नंबर तो पहले दूसरा लगे, 608 वाले तो बात बहुत आगे की है, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तुम वही उम्मीद से पढ़ते थे, अठारहवां नंबर से उसके पास होना वो तो लांछन लगता था उनको, फर्स्ट नंबर आने का कोशिश रहता था, कभी दूसरा आता था, कभी तीसरे आता था, चौथा नंबर कभी आया ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट नंबर का हमारा ट्राई रहता था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आगे में कोई जा नंबर नहीं जाएगा, आगे वाली बात क्यों करें अपन। कहते हैं कि इसमें कही हुई बात सर्वशास्त्र को मान्य है, ये बात सबको मान्य है, सभी शास्त्र यानी सभी आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, मुनियों ने, गुरु परंपरा में सभी ये बात मान्य हो चुकी है, वो बात हम यहाँ कह रही हैं, कह रहे हैं।
हाँ,
और ऋषभदेव जी ने 98 पुत्र को त्वरा से मोक्ष होने के लिए ही यही उपदेश किया था कि अगर किसको त्वरा से मोक्ष में जाना हो तो, शीघ्रता से मोक्ष में जाना हो तो गुरु आज्ञा में आ जाओ, ने फिर कोई माथा पचीसी करने की जरूरत नहीं है तुमको, वो कहे वैसा कर लो, ने उसकी कीमत चुकानी पड़ी तो चुका दो, कीमत क्या चुकानी पड़ेगी कि प्रतिबंध को टालना होगा, प्रकृति को समर्पण करना होगा, करो सर्वसमर्पण करना है, उसमें एक बात क्यों बाकी रखते हैं, प्रकृति वाली भी दे दिया तो सब दे दिया। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कुछ न कुछ, तो क्या होता है कि सब छोड़, सब वो मृत्यु को पसंद करेगा, प्रकृति नहीं छोड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको गुस्से कभी नहीं होना, गुस्से होंगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी नाजुक हो गया है, सीरियस है, कभी भी गुस्सा में आ जाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, फिर भी वो गुस्सा करेगा, उसको गुस्सा करने का कोई प्रसंग बनेगा, उस मालूम है तो भी वो प्राण देगा, प्रकृति नहीं छोड़ेगा, होता है कि नहीं होता है। हाँ, हर एक का अलग अलग प्रकृति होती है, कोई मानी होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, कोई मायावी होता है, तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए कड़ा पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए नहीं, कड़ा पुरुषार्थ चाहिए। तो ज्ञानी की आज्ञा में रहना वो कोई सुलभ बात नहीं है, आज्ञा में एकतान होना असुलभ है, सुलभ नहीं है, इसलिए बोला है। तो कहते हैं कि अगर त्वरा से मुक्ति में जाना हो तो इसका अवलंबन ले लो, मुझे ज्ञानी की आज्ञा तोड़नी नहीं है, ज्ञानी की आज्ञा में रहना है, उसका उल्लंघन करना नहीं है, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए तो हो जाए, हमें परवाह नहीं है, हमको आज्ञा में रहना, वही हमारा धर्म है और उससे ही हमारा आत्म कल्याण है। ये बात समझ में सही तरह आ गई तो त्वरा से मुक्ति हो जाएगी, और ऋषभदेव भगवान के 98 पुत्र की त्वरा से मुक्ति इसी कारण से हुई थी, और भगवान ने भी यही उपदेश दिया था। तो ये इतिहास हुआ सतयुग के प्रारंभ में, चतुर्थ काल के प्रारंभ में भी यही बात बनी थी, और परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को भी यही उपदेश किया, और मध्यकाल में भी वही बात बनी, आखिर में भी वही बात बनी। अनंत काल तक जीव निज छंद से चल कर के परिश्रम करे तो भी अपने आप से ज्ञान पार प्राप्त कर सकता नहीं, उपादान नु नाम लिये जे तजे निमित्त, पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांतिमान स्थित। શાસ્ત્રો વાંચીને ગમે એમ કે હું મારી મેળે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરું છું, અપને સે પ્રાપ્ત કરૂંગા, મેરે મેં બહુ શક્તિ હૈ, ભગવાનને બોલાય તેરે મેં બહુ શક્તિ, ઇસમે તો તેરા ચલને વાલા, અનંત કાળ તક પરિશ્રમ કરે. और वो अनंत काल में भी प्राप्त कर सकेगा. अनंत काल तक जीव निज छंद से चल करके परिश्रम करे, क्योंकि अंतर्मुख होने का जो रहस्य है वो अपने आप किसी को सूझता नहीं या मिलता नहीं है, उसको दिखाने वाला चाहिए, उसको दिखाने वाला. और वो स्टेज आता है भाव भाषण में, भाव भाषण का जो स्टेज है यहां से पहले दिशा बदलती है, जिसकी दिशा बदलती है उसकी दशा भी बदल जाती है. तो वो दिशा, दो ही दिशा है, एक बहिर्मुख एक अंतर्मुख. अंतर्मुख की दिशा से जो अनजाना है अनादि से, उसको अंतर्मुख होने वाला उसका प्रैक्टिकल दिखाता है और वो देखने के योग्य होता है तो देखता है, उसकी योग्यता होती है तो देखता है, ये मेल होता है, तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति. दूसरा संकित होने के अंगभूत, ये अंग हो गया इसका, संकित का अंग मिल गया उसको, अंग बोला है स्वभाव, कारण नहीं बोला, पूर्व पर्याय नहीं बोला, निमित्त नहीं बोला, अंग बोला है. इसलिए ज्ञानी का आराधक अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है. संकेत मिल गया, अंतर्लक्ष हो गया, भाव भाषण हो गया, संकेत हो गया, मुनि दशा तो थी पहले से, केवल ज्ञान हो गया. ऐसे जीव इतिहास में बने हैं, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान दे दिया, देखिए ज्ञान ही मिला बाद में. सुगंध जी का कितना प्रयास था, तंतोर प्रयास था, कैसा तंतोर प्रयास, वो इतना बोला था कि अगर मुझे शांति नहीं मिलती तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था, मैं मर जाता शायद, मेरा देह छूट जाता, इतनी वेदना में आए थे. और उसमें गुरुदेव का योग बैठ गया, फटाफट काम कर लिया एक दिन में. हाँ, या तो विकल्प फट जाएगा या देह छूट जाएगा, ये प्रश्न हमने किया था. हम एक दिन शाम को घूमने को गए थे बाहर, इकलिया डैम लेक है ना, तालाब के पास पर बैठे थे, बिछाने का ले गए थे चटाई, तो गाड़ी लेके गए थे, फिर एक गाड़ी के पांच छह पैसेंजर थे, चटाई निकाल करके बैठे. तो हमने ये प्रश्न निकाला, भाई साहब आपको ये अनुभव हुआ इतना जल्दी, इसके पहले आपकी पूर्व भूमिका तो क्या थी, ये तो बताइए कि पहली दशा कहाँ तक, कैसे दशा हो गई जब ये अनुभव इतना जल्दी आ गया. क्योंकि विकल्प में उतनी अशांति लगती थी, उतनी अशांति लगती थी कि या तो विकल्प फट जाए या देह छूट जाए, ऐसी मेरी दशा हो गई थी. तो फिर उसको प्राप्त करने में देर लगती ही नहीं है. तो ये जो विकल्प में, जो विकल्प की जो वेदना थी, ये वेदना ने ये परिस्थिति पूरी तैयारी वाली बना दिया. तो वेदना बहुत अच्छी चीज है. क्या है वेदना? है और सबसे बढ़िया चीज है, वो होनी ही चाहिए, और जितनी ज्यादा हुए उतना अच्छा है.
विकल्प माने परिणाम.
विकल्प वो भी प्रश्न पूछते हैं, विकल्प आपको होता है कि नहीं होता है, तो फिर क्या पूछने का बात है, देखो क्या होता है.
તો
कंट्रावर्सी नहीं, योग्यता, योग्यता जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सबकी योग्यता एक प्रकार की नहीं होती है। तो ज्ञानी के चरण में जो आते हैं तो उनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट देते हैं और उनको तैयार कर देते हैं, जितने भी रोग हैं वो निकाल देते हैं, हो जाते हैं तैयार। तो देर सवेर होती है, कोई मटेरियल बात है, किसी को जल्दी हुआ और किसी को थोड़ा टाइम लग गया, तो वो कोई थोड़ा टाइम लग गया वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। काम कर लिया ना, अनंत काल का काम कर लिया, ये बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे बढ़िया बात तो है, भजन देने लायक तो वो बात है कि काम कर लिया। हाँ, तो दोनों का मेल खा गया, उसको आत्मयोग कहते हैं। शास्त्र में कही हुई आज्ञा परोक्ष है, जीव को अधिकारी मैंने सुपात्र होने के लिए कही है। शास्त्र पढ़ो, पात्रता को बनाओ, शास्त्र पढ़ो तो पात्रता को बना लो। मोक्ष होने के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में ही बीज ज्ञान मिलता है, बिना प्रत्यक्ष किसी को अपने आप बीज ज्ञान मिलता नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी कही, यह जो बात है वो ज्ञान मार्ग की श्रेणी, श्रेणी मैंने उत्तर उत्तर आगे बढ़ने की कार्य पद्धति कही। इसको प्राप्त किए बिना दूसरे मार्ग से मोक्ष नहीं है, इसके सिवा दूसरे मार्ग से मोक्ष नहीं है। और वो बात गुप्त है, क्योंकि लोग जानते नहीं है ये बात, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ने वाले भी नहीं जानते, क्योंकि उसमें उपादान की बात को मुख्य कर देता है। ये गुप्त तत्व को जो आराधन करता है, यानी सत्पुरुष के चरण में चला जाता है, आज्ञा में एक स्थान हो जाता है, वह प्रत्यक्ष अमृत को प्राप्त करके अभय हो जाता है। उसको प्रत्यक्ष अमृत मिल गया समझो, और वो जन्म मरण से छूट गया, उसको मृत्यु पर विजय हो जाएगी। अमृत पीने वाले